18 नवंबर रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। ब्रेक्जिट डील के मुद्दे पर ब्रिटानी प्रधानमंत्री ने कहा, नेतृत्व बदलने से कोई फायदा नहीं होगा।
A change of leadership at this point isn't going to make the negotiations any easier, and it's not going to change the parliamentary arithmetic. What it will do is bring in a degree of uncertainty.
अमृतसर के पास निरंकारी भवन पर हमले में 3 लोगों की मौत, कई घायल।
इंटेलिजेंस इनपुट्स जो थी वो डिफरेंट टाइप की थी, ये जो अटैक है वो उससे रिलेटेड नहीं, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से जो पता चलता है।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता कुछ साफ हुआ और केरल में सबरीमला मंदिर पर तेज हो रही है राजनीति, सब विस्तार से। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने उनके ब्रेक्जिट समझौते का विरोध कर रहे पार्टी के अपने सहयोगियों को चेताया है कि इस संवेदनशील समय में नेताओं को बदला गया तो समझौते में और देर हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाया गया तो ब्रेक्जिट में आसानी नहीं हो जाएगी। भारत के उत्तरी राज्य पंजाब में अमृतसर के पास निरंकारी भवन पर हुए एक हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 घायल हैं। चश्मदीदों के अनुसार 2 युवक निरंकारी भवन के पास पहुंचे और विस्फोटक सामग्री फेंक दी। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये एक ग्रेनेड हमला हो सकता है। अपनी गठबंधन सरकार को बचाने में जूझ रहे इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि तुरंत चुनाव करवाना गैर जरूरी और गलत होगा। गजा के लड़ाकों के साथ इसराइल के युद्ध विराम के विरोध में रक्षा मंत्री एविगदोर लिबरमैन के इस्तीफे के बाद इसराइल की गठबंधन सरकार बहुमत से सिर्फ एक ही सीट ज्यादा है। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा,
हाल के दिनों में मेरी गठबंधन दलों के नेताओं से बात हुई है। आज शाम मैं वित्त मंत्री कहलोन से मिलूंगा ताकि सरकार को गिरने से बचाने की आखिरी कोशिश की जाए।
मौजूदा वक्त हमारी सुरक्षा के लिए संवेदनशील है और ऐसे में चुनाव करवाना गैर जरूरी और गलत होगा। ये थे इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कैलिफोर्निया में लगी आग से जलवायु परिवर्तन को लेकर उनकी राय नहीं बदली है। आग में बुरी तरह तबाह हुए पैराडाइज कस्बे के दौरे पर आए ट्रंप ने कहा कि जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए तरीकों को बेहतर किया जाएगा तो त्रासदियां फिर नहीं होंगी। ब्यूट काउंटी के शेरिफ कोरी होनिया ने बताया है कि उनके यहां लगभग 1200 लोग लापता हैं।
As of tonight, the current list of unaccounted individuals stands at 1,276.
आज रात तक स्थिति यह है कि 1276 लोगों का कोई पता नहीं है। कल के मुकाबले ये संख्या 265 बढ़ गई है। पिछली रात से लेकर अब तक 5 अवशेष बरामद हुए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या 76 हो गई है। इनमें से 4 अवशेष पैराडाइज में मिले और एक कॉनकाओ में मिला। ये थे कैलिफोर्निया की ब्यूट काउंटी के शेरिफ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र में हाल के कुछ हफ्तों में कम से कम 40 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों की गिरफ्तारी की खबर है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से कई लोग राजनीतिक बंदियों के परिजनों की सहायता कर रहे थे। 2014 में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अलसीसी के सत्ता में आने के बाद से लेकर सरकार के विरोधियों के खिलाफ व्यापक अभियान के तहत दसियों हजार लोग जेल में बंद किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को अपने चुनाव अभियान के लिए दान में मिले $35,000 लौटाने होंगे। उन्हें यह रकम भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही एक ऐसी कंपनी से मिली थी जो उनके बेटे से जुड़ी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी ठेके लेने के बदले कंपनी ने ये रकम दी थी। फिजी में प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनीमरामा दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं। उन्होंने चुनाव में करीबी मुकाबले में एक अन्य तख्तापलट के नेता रहे सितिवेनी राबुला को हराया। बैनीमरामा ने 2006 में रक्तविहीन तख्तापलट में सत्ता हासिल की थी और उसके बाद से ये दूसरे आम चुनाव थे। मेक्सिको में अमेरिका की सीमा से लगते तिजुआना शहर में पुलिस ने बैरियर लगाए हैं ताकि अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों के समूह को रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सीमा पर हजारों सैनिक तैनात किए हैं। अमरीका और चीन के गहरे मतभेदों का पैसिफिक देशों के नेताओं के एक सम्मेलन पर असर पड़ा है। एपेक सम्मेलन की बैठकें शुरू होने के बाद ये ऐसा पहला मौका है जब सम्मेलन के बाद नेता कोई नतीजा घोषित नहीं कर पाए। सम्मेलन से पहले अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने पापुआ न्यूगिनी में जुटे देशों को चेताया था कि अगर वो चीन से किसी तरह का कर्ज लेते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि चीन के राष्ट्रपति का कहना था कि उनकी ओर से दिए जाने वाले पैसे के पीछे किसी तरह का कोई जाल नहीं है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। पंजाब में अमृतसर के पास निरंकारी भवन पर हमला हुआ है। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। इस खबर पर हम आएंगे कुछ ही देर के बाद और करेंगे चर्चा निरंकारी समुदाय के बारे में, सिखों से उनके मतभेदों के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर से। यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर यानी ब्रेग्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने अपनी पार्टी के सहयोगियों को चेतावनी दी है। ये वो सहयोगी हैं जो ब्रेग्जिट डील का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने उन्हें चेतावनी दी है कि नेतृत्व को बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे होगा सिर्फ इतना कि समझौते में देर होती जाएगी। स्काई न्यूज पर सोफी रिच के साथ बातचीत में ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा,
लीडरशिप में परिवर्तन करने से बातचीत की राह आसान नहीं होगी। इसे संसद के समीकरण नहीं बदलेंगे। इसकी वजह से लोगों और उनके रोजगार के बारे में अनिश्चितता अवश्य बढ़ेगी। लीडरशिप बदलने से ब्रेग्जिट समझौते में देरी होगी और असंतोष बढ़ेगा।
स्काई न्यूज के कार्यक्रम में ही सोफी रिज ने जब लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बन से पूछा कि यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर क्या ब्रिटेन में दोबारा जनमत संग्रह कराना चाहिए, इस सवाल पर जेरेमी कॉर्बन ने कहा,
दोबारा जनमत संग्रह भविष्य के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये विकल्प आज के लिए नहीं है। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि ब्रेग्जिट समझौते को दोबारा नए सिरे से किया जाए।
यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर ब्रिटेन में जारी इस चर्चा से 4 दिन पहले यानी 14 नवंबर को ब्रिटानी कैबिनेट ने ब्रेग्जिट ड्राफ्ट डील को मंजूरी दी थी। नवंबर के आखिर में ड्राफ्ट डील मंजूरी के लिए यूरोपीय संघ के पास भेजी जाएगी। दिसंबर में अगले महीने इस समझौता प्रस्ताव को ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया तो अगले साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ से अलग होने का बिल पेश किया जाएगा, और अगर ब्रिटेन की संसद ने इसे ठुकरा दिया तो सरकार को 21 दिन के भीतर नया प्रस्ताव तैयार करना होगा। दिन भर में लौटते हैं अब भारत। भारत के राज्य पंजाब, जहां अमृतसर के पास निरंकारी भवन पर हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। अमृतसर से हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रावबिन इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं।
आज अमृतसर के पास गांव अदलीवाल में स्थित निरंकारी सत्संग भवन में चल रहे साप्ताहिक सत्संग के दौरान एक ग्रेनेड हमले में निरंकारी संप्रदाय के 3 अनुयायी मारे गए और 19 जख्मी हो गए हैं। इस घटना से पहले पंजाब में एक आतंकी हमले की चेतावनी के चलते पंजाब पुलिस पहले से ही सर्च ऑपरेशन कर रही थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस घटना को आतंकवादी घटना से अभी जोड़ना जल्दबाजी होगी। घायलों को पास के हॉस्पिटल्स में दाखिल करवा दिया गया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख रुपये देने की घोषणा भी की है। हमने वहां पर जो चश्मदीद गवाह थे उनसे भी बात की। घटना के समय वहां मौजूद गगनदीप ने हमसे बात करते हुए दावा किया कि हमलावर 2 की संख्या में थे और उनके पास पिस्तौल और गोल बम जैसी चीज थी। उन्होंने दावा किया कि उनमें से एक हमलावर ने उसे और उसके साथी को बंधक बना लिया था, जबकि दूसरा भवन के अंदर गया और वहां जाके उसने बम फेंका। पुलिस चश्मदीद गवाह और वहां पे मौजूद लोग जितने भी थे उनसे उनके बयान दर्ज कर रही है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह ने हमले की पुष्टि करते हुए बीबीसी को बताया,
इंटेलिजेंस इनपुट्स जो थी वो डिफरेंट टाइप की थी। ये जो अटैक है वो उससे रिलेटेड नहीं जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से जो पता चलता है, लेकिन बाद में डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन होगी उससे इसके कंटूर्स कौन है, किसका हाथ है, वो सारा सामने।
और यहाँ हम बताते चलें कि अदलीवाल अमृतसर से 8 किलोमीटर पर स्थित है, जबकि अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर पर स्थित है, जो कि पहले से ही हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट घोषित किया जा चुका है। इस घटना के बाद एयरपोर्ट और उसके आसपास की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आए थे और उन्होंने हमले के समय अपने मुंह ढके हुए थे। हमला करने के बाद वे गांव अदलीवाल की बाहर की सड़क से फरार हो गए। पुलिस गांव की तरफ आने जाने वाली सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। डीजीपी सुरेश अरोड़ा घटनास्थल पर भी गए और उसके बाद अस्पतालों में घायलों से हाल जानने के लिए भी गए। पंजाब में 80 के दशक में आतंकवाद के काले दिनों को देख चुका है और इन दिनों इस घटना के साथ पंजाब के लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो गया है। बीबीसी हिंदी के लिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन।
निरंकारी समुदाय जिनके भवन पर यह हमला हुआ, कौन है ये लोग और सिखों से उनके क्या मतभेद रहे हैं, जानने के लिए मैंने बीबीसी पंजाबी सेवा के हमारे सहयोगी खुशहाल लाली से बात की।
जो निरंकारी लहर है उसकी जो शुरुआत है वो सिख धर्म से ही होती है। ये 19वीं सदी में पाकिस्तान जो का रावलपिंडी एरिया है वहाँ से बाबा दयाल ने एक गुरुद्वारे से ही इसकी शुरुआत होती है। वो गुरु नानक देव की सिख्याओं पे चलते थे और उनके बाद भी जो उनके अगले इस सेक्ट के गुरु आए उनका जो सिंह सभा लहर है उनके साथ साथ चलते रहे। तो एक तरह की ये एक सिख धर्म से ही निकली हुई सुधार लहर मैं इसको बोल सकता हूँ। लेकिन 1929 तक आते आते जब इसकी कमांड बाबा बूटा सिंह पास आई तो उसने खुद को जो मेन निरंकारी लहर थी उससे खुद को अलग कर लिया और गुरु ग्रंथ साहिब को जो गुरु मानने की सिख धर्म में मान्यता है जहाँ उससे भी उल्ट स्टैंड लेते हुए एक व्यक्ति को गुरु मानने की परंपरा जो है शुरू कर ली और यहीं से सिख धर्म और ये जो नया निरंकारी मिशन बना है जिसका आजकल जो मुख्य ऑफिस दिल्ली में है वहाँ से 1929 से वो निरंकारी मिशन की शुरुआत होती है जो असल निरंकार से अलग है।
1929 का जिक्र किया आपने, ये मतभेद समय के साथ बढ़ते गए या कुछ कम हुए?
1929 के बाद जो निरंकारी संप्रदाय थी उसने जैसे ही सिख धर्म से अपना नाता तोड़ लिया और एक इंडिपेंडेंट संप्रदाय के तौर पे वो विचरने लगे जिनको उन्होंने गुरु की मान्यता दी बाबा अवतार सिंह, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसको अवतार बाणी बोला जाता है। उस ग्रंथ को लेकर सिखों के बीच में काफी सिद्धांतक मतभेद की बात उठी और ये विरोध बढ़ता बढ़ता इतना हो गया कि 1978 तक वो एक वायलेंट रूप ले गया।
कोई अंदाजे से बता सकते हैं कि पंजाब में निरंकारी समुदाय की आबादी कितनी होगी सिखों के मुकाबले?
ऐसा तो कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी होगी, लेकिन बड़ी गिनती में लोग इनके भी पैरोकार हैं। लेकिन अकाल तख्त की तरफ से एक आदेश सिख कौम को जारी हुआ है जिसके मुताबिक निरंकारियों के साथ सिखों का कोई भी जो सिख धर्म को फॉलो करता है वो अपना रिश्ता नहीं रखता है। एक तरह का सामाजिक बाइकाट उन्होंने किया हुआ है। 1978 की बात है, 13 अप्रैल जिसको खालसा पंथ का स्थापना दिवस भी बोला जाता है, उस दिन 1978 में अमृतसर में जो तत्कालीन इनके मुखिया थे बाबा गुरबचन सिंह उनका एक कार्यक्रम था तो सिख संगठनों ने उसका विरोध किया कि ये हमारे बीच मतभेद है और सिखों की खालसा पंथ का स्थापना दिवस है, इस प्रोग्राम को बंद करवाइए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय में अकाली दल की पंजाब में सरकार थी और प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे।
मैं इसी राजनीतिक पहलू पे आ रहा था, ये बताइए कि पंजाब की राजनीति में निरंकारियों का कितना दखल है?
पंजाब की राजनीति में उस तरह की एक्टिव जो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली उनका दखल ऐसा नहीं है, लेकिन जो धार्मिक विचारों का मतभेद था वो इतना बढ़ गया था कि 78 में जब समागम हो रहा था अकाल तख्त पे सिख संगठन इकट्ठे हो गए। ये वो दौर था जब जरनैल सिंह भिंडरांवाले दमदमी टकसाल के प्रमुख थे और ऐसे कई सिख संगठन वो इकट्ठे हुए अकाल तख्त पर। उन्होंने सरकार को कहा कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम इसका शांतमय तरीके से विरोध करेंगे और उस दिन एक जथा वहां से निरंकारी मिशन के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए निकला और जिसमें वहां जाके फायरिंग हुई और 13 लोग मारे गए। सिख संगठनों की ओर से कहा गया कि ये सारा कुछ निरंकारी मुखी गुरबचन सिंह के कारण हुआ है। तो उसका फिर 24 अप्रैल 1980 में रणजीत सिंह जो बाद में अकाल तख्त के जथेदार बनते हैं उन्होंने कुछ साथियों के साथ उनका कत्ल कर दिया। वो हाई प्रोफाइल कत्ल था, भिंडरांवाले की गिरफ्तारी तक हुई लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया गया। रणजीत सिंह ने को उम्र कैद हुई और अकाली दल और सिख संगठनों ने मर्सी पिटीशन के तहत उनको माफ़ किया और अकाल तख्त के वो जथेदार बने।
हम अतीत में बहुत पीछे पहुंच गए, आज के पंजाब में लौटते हैं।
अब जो लोगों के बीच, आम लोगों के बीच में ऐसा कोई आपस में कोई बैर विरोध नहीं है, लोग मिलते हैं। 1978 की बात पुरानी हो गई है। ये है कि जो ज़्यादा कुछ धार्मिक लोग कट्टर रहते हैं अपने धर्म में वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, अदरवाइज आम लोगों में कोई फर्क नहीं है, जिंदगी सामान्य है। 1978 के बाद मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी घटना जो घटी है, ये निरंकारियों पे पहला अटैक मैं कह सकता हूँ।
अमृतसर के पास निरंकारी भवन पर हमले में 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। बीबीसी पंजाबी सेवा के सहयोगी खुशहाल लाली दे रहे थे जानकारी।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 9,510 और 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल ने मराठा आरक्षण की मुश्किल राह को कुछ आसान बनाया है, ऐसा लग रहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए महाराष्ट्र में हमारे सहयोगी संजय रमाकांत तिवारी टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संजय रमाकांत तिवारी, आप सुन पा रहे हैं हमें?
जी जी बोले
जी। ये बताएं कि देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण पर सहमति की राह तक कैसे पहुंचे, बताएं
जी। पिछली बार जब आंदोलन चल रहे थे तभी जिक्र हो रहा था कि महाराष्ट्र की जो राज्य पिछड़ा आयोग है वो इस पर जांच कर रहा है और वो रिपोर्ट देने वाला है, ये कहा जा रहा था। उसकी रिपोर्ट इसी सप्ताह गुरुवार को सौंप दी गई राज्य सरकार को। उसमें जो 3 प्रमुख बातें कही गई हैं, मैं वो संक्षेप में आपको बता दूं। पहली बात ये कही गई है कि मराठा समाज जो है उसे आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा माना गया है। दूसरी बात, भारतीय संविधान की जो कलमें हैं 15.4 और 16.4 के अंतर्गत मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए पात्र माना गया है। और तीसरी बात, मराठा आरक्षण संबंधी ये जो फैसला होगा उसे लेने के लिए राज्य सरकार को अधिकार है, ये बात भी कही गई है। तो कुल मिलाकर आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इन तीनों अनुशंसाओं को मान्य कर लिया गया है। कल से, मैं आपको बता दूं, मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल का शीत सत्र शुरू हो रहा है जिसमें ये अहवाल रखा, ये रिपोर्ट रखा जाएगा और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि कटिंग अक्रॉस द पार्टी स्पेक्ट्रम हर पार्टी चाहती है कि मराठा आरक्षण का मामला जो है जल्दी से सुलझे। और इस पर आज मुख्यमंत्री ने एक उपसमिति की भी घोषणा कर दी है। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री ने जाहिर तौर पर ये कहा था मराठवाड़ा में कि 1 दिसंबर तक रुकिए और 1 दिसंबर से आप उत्सव कीजिएगा, मराठा लोगों को जो आंदोलन कर रहे थे उनको उद्देश्य कर उन्होंने ये बात कही।
संजय, ये बताइए कि मराठों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने पर सहमति बनी है?
जी, ये जो बात चल रही है ये 16% आरक्षण की बात चल रही है सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक आरक्षण 16% की ये बात चल रही है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है आप जानते हैं उसके तहत 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में पहले ही आरक्षण का जो परसेंटेज है वो 52% जा चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज ये बताया कि SEBC नाम का नया कोटा बनाया जा रहा है OBC की तर्ज पर। SEBC यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा, यानी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड। तो इस नए प्रवर्ग में, इस नए कोटे में, उसके तहत ये मराठों को आरक्षण दिया जाएगा।
संजय, लगे हाथ ये भी बताइए कि मराठों को आरक्षण देने जिस तरीके से दिया जा रहा है, यदि वो मूर्त रूप वाकई ले लेता है, उससे राज्य के सियासी समीकरण किस तरह प्रभावित हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, राज्य में अगर देखा जाए, अगर हम थोड़ी इतिहास की बात करें, क्योंकि ये जो रिटायर्ड जस्टिस हैं NG गायकवाड़, जिनकी अगुवाई में ये कमीशन था, उसने 2,00,000 मेमोरेंडम का अध्ययन किया है, 45,000 परिवारों का सर्वे किया और इसके अलावा ऐतिहासिक तथ्य भी जुटाए हैं, पुराना ऐतिहासिक डाटा भी इकट्ठा किया। तो उन सब में ये साफ तौर पर जो दिखता है कि राजपूत भी हैं मराठा, मराठा किसान भी हैं, मराठा कुनबी किसान भी हैं, कोली यानी जो मछुआरे हैं वो भी मराठा हैं। करीब एक तरह से माना जाता है कि 30-40% मराठा जो है वो महाराष्ट्र में है। हालांकि इनमें से जो कुनबी जाने जाते हैं, कुनबी के नाम से जो गरीब, जो जिनकी करीब 80% तादाद मानी जाती है, वो किसान हैं, गरीब वर्ग के हैं, उनमें से कई लोगों को पहले से ही मंडल आयोग के तहत ओबीसी में रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन जो बाकी जो एक बड़ा वर्ग है जो अब भी किसान आत्महत्याओं में जिनका नाम आता है, जो अभी भी पिछड़े हैं, उनके आंदोलनों की वजह से आपको याद है मूक मोर्चे निकाले गए थे उन सब के बाद में।
संजय रमाकांत तिवारी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता कुछ साफ हो गया है पहले के मुकाबले, जानकारी दे रहे थे महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी संजय रमाकांत तिवारी। बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। भारत प्रशासित कश्मीर में बीते 24 घंटे में संदिग्ध चरमपंथियों ने 7 आम नागरिकों को अगवा कर लिया है। इनमें से कम 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है, लेकिन घाटी के लोग इन घटनाओं से दहशत में आ गए हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की रिपोर्ट सुने।
दक्षिणी कश्मीर के जिला शोपियां में बीती शुक्रवार की देर रात संदिग्ध चरमपंथियों ने 11वीं जमात के एक छात्र का घर से अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस वीडियो में चरमपंथी 11वीं क्लास के इस छात्र को गोलियां मारकर घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद शनिवार को जिला शोपियां के विभिन्न इलाकों में चरमपंथियों ने और भी 4 युवाओं का अपहरण किया था। हालांकि शनिवार देर रात चरमपंथियों ने 3 युवाओं को छोड़ दिया है, जबकि एक युवा की चरमपंथियों ने गला रीत कर हत्या कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इतवार की सुबह को चरमपंथियों ने जिला शोपियां में एक और युवा का अपहरण किया है। चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑडियो क्लिप भी 11वीं क्लास के छात्र की हत्या के बाद सामने आया है। ऑडियो क्लिप में हिजब कमांडर ये कहते सुने जा सकते हैं कि इस तरह की हत्याएं इसलिए अंजाम दी जा रही हैं कि जो भी सुरक्षा बलों या पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करेगा उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा।
मुखबिर छोटा हो या बड़ा, मुखबिर होता है और मुखबिर को बराबर अपना सजा मिलता रहेगा।
वही पुलिस का कहना है कि इस तरह की हत्याएं बहुत ही अफसोसजनक हैं। पुलिस का कहना था कि जिन आम नागरिकों को मुखबिरी के नाम पर मारा जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस के डीजी दिलबाग सिंह ने बीबीसी को बताया,
काफी को पर्सनल वेंडेटा चल रहा है, तो लोग अपनी दुश्मनी एक दूसरे के साथ जीतबाजियां निकाल रहे हैं और बिल्टन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उधर राजनीतिक दलों ने भी इस तरह की घटनाओं की सख्त निंदा की है। सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी और विधायक MY तारीगामी,
देखिए जहाँ तक जिन हत्याओं का ताल्लुक है और ये जो किडनैपिंग हो रही है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही पेनफुल है और हमारी नजर में सेल्फलेस ये सब कुछ जो हो रहा है।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस तरह की घटनाओं को निंदनीय बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा 11वीं जमात के छात्र की हत्या बहुत ही परेशान कर देने वाली घटना है। 2 महीने पहले भी दक्षिणी कश्मीर में चरमपंथियों ने पुलिस कर्मियों के 11 रिश्तेदारों का अपहरण किया था, जिनको बाद में छोड़ दिया गया था। इस बीच आज दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। बीते 4 वर्षों से दक्षिणी कश्मीर चरमपंथ का गढ़ माना जाता है। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
भारत के सुदूर दक्षिणी राज्य केरल में सबरीमला मंदिर के इर्द गिर्द राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां बीजेपी का आरोप है कि केरल की वाम मोर्चा सरकार सबरीमला मंदिर के लिए पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक से मुहैया नहीं करा रही, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय पर्यटन मंत्री हालात का जायजा लेने के लिए केरल जा रहे हैं। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्री अल्फोंस कनम थानम कल सुबह पंबा पहुंच रहे हैं, जहां से भक्त सबरीमला जाते हैं। बीबीसी से बातचीत में अल्फोंस कनम थानम ने बताया, हम सबरीमला नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ पंबा जा रहे हैं। केंद्र का पर्यटन मंत्री होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि पर्यटन जगहों पर बुनियादी संरचना अच्छी रहे, खासकर जब सबरीमला पर्यटन के नजरिए से महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्र सरकार ने पंबा, सबरीमला और एरुमिली में बुनियादी संरचना के लिए राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपये दिए हैं। हम वहाँ जाकर मूल्यांकन करेंगे। ये थे अल्फोंस कनथानम के शब्द। तो क्या इसका मतलब यह है कि केंद्रीय मंत्री मुलायना करने आ रहे हैं? इस सवाल पर अल्फोंस कनम थानम ने कहा, हाँ, यह निरीक्षणीय है। हम केंद्रीय पर्यटन मंत्री होने के नाते निरीक्षण करेंगे। ये थे अल्फोंस कनम थानम के शंडी शब्द। केंद्रीय मंत्री अल्फोंस कनाथानम के शब्द बहुत अहम इसलिए हैं क्योंकि पिछले 48 घंटों में केरला के बीजेपी नेताओं के रुख में बहुत बदलाव आया है। ये रुख तब बदला जब पुलिस ने हिंदू संगठन आईके वेदी के अध्यक्ष केपी शशिकला को हिरासत में लिया क्योंकि वो रात के समय सन्निधानम की ओर जा रही थी जहां किसी को भी जाना मना है। बीजेपी ने हिंदू संगठन की बुलाई हड़ताल का समर्थन किया था और आरोप लगाया कि सबरीमला में भक्तों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और शौचालय भी नहीं थे। इस बीच ये नारे भी सुनने को मिले। पुलिस अपने वर्दी की इज्जत कमाए, पुलिस कर्मी जैसे वर्दी पहनकर सीपीएम के कार्यकर्ता का काम ना करें। इसके फौरन बाद पुलिस ने बीजेपी के सचिव के सुरेंद्रन को गिरफ्तार कर लिया जब वो रात को सबरीमला की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो भक्त हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर प्रदर्शन भी किया। मतलब ये कि बीजेपी केरला में अपने लिए समर्थन बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है ताकि वो वाम मोर्चा सरकार पर दबाव बनाए रखें। इमरान कुरैशी, बीबीसी, पंबा, सबरीमला, केरला।
और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आदेश जी, खेल के मैदानों में महिलाओं का जलवा।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो आईसीसी महिला विश्व 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में जो वेस्ट इंडीज में हो रहा है वहाँ वो सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है। चारों मुकाबले उसने जीते, लेकिन अब सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना किस टीम से होगा ये जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब आज पुणे में वेस्ट इंडीज़ का सामना इंग्लैंड से होगा। और इस मुकाबले में जो टीम हारेगी यानी अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहेगी उससे भारत का सामना होगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का सामना आज बांग्लादेश से होगा, लेकिन इस मुकाबले का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पूल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी हैं।
कुछ खबरें मुक्केबाजी बॉक्सिंग के रिंग से भी आ रही हैं।
जी हाँ, और सबकी नज़रें भारत की एमसी मैरी कॉम पर, जिनके नाम इतने रिकॉर्ड हैं कि शायद हमारा आधे घंटे का कार्यक्रम ही समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी संक्षेप में बताना चाहेंगे कि 5 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम 48 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं। उन्होंने कजाकिस्तान की आईगेरीम कसाना येवा को 5-0 से हराया, लेकिन एक बड़े उलटफेर का शिकार होकर एल सरिता देवी 60 किलो भार वर्ग में आयरलैंड की कैली एने रिंगटन से 3-2 से हारकर बाहर हो गए। लेकिन अभी पिंकी रानी पर पूरी उम्मीदें हैं। उधर विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुष एकल सेमीफाइनल में उन्हें शीर्ष वरीयता हासिल थाईलैंड के कुनलावुत विदित्सान के हाथों 22-20, 16-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं जॉर्डन में एक मुकाबला हुआ जहाँ मेजबान टीम ने दोस्ताना फुटबॉल मुकाबले में भारत को 2-1 से हरा दिया। और सबकी नज़रें रहेंगी आज देर रात जब साल 2018 का एटीपी फाइनल्स का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और तीसरी वरीयता हासिल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। उधर एक अच्छा समाचार इंग्लैंड के लिए कि उसने पल्लिकल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को 57 रन से हरा दिया और इसी के साथ इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की ये जो सीरीज़ है उसमें 2-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है।
खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त की जुबानी। उसके बाद वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं आदर्श राठौड़ से।
बीबीसी समाचार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि अगर मुझे पद से हटाया गया तो इससे ब्रेग्जिट की प्रक्रिया आसान नहीं हो जाएगी। भारत के उत्तरी राज्य पंजाब में अमृतसर के पास एक निरंकारी भवन पर हुए एक हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 19 घायल हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कैलिफोर्निया में लगी आग से जलवायु परिवर्तन को लेकर उनकी राय नहीं बदली है। अपनी गठबंधन सरकार को बचाने में जूझ रहे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि तुरंत चुनाव करवाना देश के लिए गैर जरूरी और गलत होगा। मिस्र में हाल के कुछ हफ्तों में कम से कम 40 मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकीलों की गिरफ्तारी की खबर है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को अपने चुनाव अभियान के लिए दान में मिले $35,000 भ्रष्टाचार के आरोप में घिरने के बाद लौटाने होंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप, हर दिन की तरह भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन bbchindi.com आपके साथ है। शुभ रात्रि।